ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 16 श्लोक संख्या 50। श्री भगवान वाच जत नारद निरोभ्यन्ते व्याहृतम् मदनुशासनम् संसिद्धोसि तया राजन् विद्यया दर्शनाच्चमे। श्री भगवान उवाच जब नारदांगिरोभ्यन्ते व्याहृतम् मदनुशासनम् संसिद्धोसि तया राजन् विद्यया दर्शनाच्च मे। उस ज्ञान से और मेरे विषय में जो विद्या सिखाई गई उससे विद्या से दर्शनाच्च दर्शन से मेरे संसिद्धोसि तुम पूर्ण सिद्ध हो गए हो। राजन ये महाराज चित्रकेतु श्री भगवान ने कहा। महाराज की स्तुति जब पूरी हो गई, जब चित्रकेतु महाराज स्तुति करके चुप हो गए, तब भगवान बोले जब नारदांगिरोभ्याम ते नारद और अंगिरा के द्वारा जो तुमको मेरे विषय में ज्ञान दिया गया उस ज्ञान से और मेरे विषय में जो उन्होंने विद्या सिखाई उस विद्या से तथा मेरे दर्शन से तुम पूर्ण सिद्ध हो गए हो। श्री भगवान अब चित्रकेतु महाराज को ज्ञान देना चाहते हैं, तो उसी के लिए अब बोल रहे हैं। भगवान अनंत देव चित्रकेतु महाराज के सामने प्रकट हैं, तो भगवान बात कर रहे हैं। पहले चित्रकेतु बोले, अब भगवान बोल रहे हैं। अंगिरा और नारद ने आपको जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान से, इसके साथ ही श्री नारद जी ने जो आपको विद्या दी है मेरे विषय में और आपने मेरा दर्शन पा लिया, तो मेरे दर्शन से आप पूर्ण सिद्ध हैं, परफेक्ट हो गए। भगवान इस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये ज्ञान भगवान के विषय में बहुत आवश्यक है और विद्या। यदि हम लोग श्रद्धा से इसी तरह जप करते रहेंगे महामंत्र का, तो एक दिन भगवान हमारी भी प्रशंसा करेंगे, ठीक हुआ, बहुत अच्छा किया जो जप किया। जैसे आज भगवान बोल रहे हैं चित्रकेतु महाराज से, तुम पूर्ण सिद्ध हो गए, सम सिद्ध, सम्यक सिद्ध हो गए। किससे? मेरे विषय में जो ज्ञान दिया गया उससे, और मेरे विषय में जो विद्या सिखाई गई उस विद्या के अभ्यास से, महामंत्र से तुम सिद्ध हो गए हो। और नारद जी ने जो 7 श्लोकों में विद्या दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ज्ञान और विद्या से, यहां विद्या का अर्थ है भक्ति से, मंत्र जप से, मेरे साध्य दर्शन को तुम पा लिए हो। चित्रकेतु को भगवान का दर्शन कैसे हुआ? जब उन्होंने विद्या का अभ्यास किया, महामंत्र का जप किया। नमो तस्मै भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रदुम्नाया निरुद्धाया नमः शंकरसुणाय। इस तरह चालू करके उन्होंने विद्या पढ़ा, और कितना दिन? केवल 7 दिन। 7 दिन यह लगातार पढ़ने से वो सिद्ध हो गए। सात दिन वो कुछ अन्न वगैरह नहीं खाए, केवल जल पी करके भजन किए एकाग्र मन से। तो इस वर्णन से हम सब भक्तों को एक प्रोत्साहन मिलता है। जब चित्रकेतु महाराज 7 दिन में भगवान को पा गए तो हम भी पा जाएंगे। कुछ अधिक वर्ष लग जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसी तरह श्रद्धा से जप करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे। और जो ज्ञान अंगिरा जी ने दिया, नारद जी ने दिया, उसी ज्ञान को दृढ़ करने के लिए भगवान अब प्रवचन करेंगे। अपने विषय में बोलते, अहम वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूत भावना, मैं ही सभी जीव के रूप में हूं। संसार में जो भी प्राणी पदार्थ है सब मैं हूं। अहम वै सर्वभूतानि, मैं सभी भूत हूं, सभी जीव मैं हूं। यहां तक कि जो भोग्य पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, वो भी मैं हूं। सब प्राणी मैं हूं और जड़ पदार्थ भी मैं हूं। इसके साथ ही साथ भूतात्मा, मैं सभी भूतों की आत्मा हूं। इसी आत्मा के कारण कोई व्यक्ति चेतना को प्राप्त करता है, देख रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है। इसीलिए उसको आत्मा कहते हैं। ये शरीर जड़ है, लेकिन इस जड़ शरीर में रह करके इसमें भगवान चेतना देते हैं, तब हाथ में शक्ति आती है, मुख में शक्ति आती है बोलने की, या चलने की शक्ति आती है। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो कोई शरीर का अंग काम नहीं करता है। कहने मात्र के लिए वही आकार रहता है इंद्रियों का, आंख वैसे ही रहती है, कान वैसे ही रहता है, लेकिन आत्मा के निकल जाने से अब व्यक्ति देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता है, पलक उठाने गिराने की भी शक्ति नहीं रहती। यदि कोई व्यक्ति मरने के बाद ले जाए सुई को आंख के पास, धसा दे, पर कोई भी प्रतिकार नहीं होगा। लेकिन जीवित अवस्था में जब तक चेतना है, आत्मा है, हम अपनी अंगुली को भी आंख के तरफ आते हुए देख करके आंख बंद कर लेते हैं। ये चेतना भगवान दे रहे हैं। इसी तरह कोई शब्द सुनते हैं, भगवान सुनने की शक्ति दिए। सारा देह वही बनाए हैं। भगवान की दो तरह की शक्ति है, एक को पराशक्ति कहते हैं और दूसरे को अपराशक्ति। पराशक्ति के द्वारा भगवान सभी शरीरों में जीव हैं, जीव बने हैं, जीव उनकी शक्ति है। और शरीर या अन्य पदार्थ सब भगवान की बहिरंगा शक्ति से बने, जीव भी भगवान की शक्ति है, इसको तटस्था शक्ति कहते हैं। इसको भगवान ने परा शब्द से व्यक्त कर दिया है, परा। अपरेयम इतस्तन्यम प्रकृति विद्धि में परा। और भगवान ने आठ प्रकार के प्रकृति को उन्होंने कहा है कि ये मेरी अपरा प्रकृति है। भूमि जल, भूमि रापो नलो वायु खम मनु बुद्धि देवच। भूमि जल अग्नि वायु और आकाश, ये पांच के सम्मिश्रण से शरीर बना है। और इसके साथ ये मन बुद्धि अहंकार, इससे हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। सूक्ष्म शरीर है, सबको अनुभव है इसका। आप यहां बैठे हैं या अपने रूम में बैठे हैं तो मन से आप दिल्ली जा सकते हैं, मन से स्टेशन जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो वो भी एक शरीर है। लेकिन वह शरीर मन बुद्धि और अहंकार से बना है। तो तीन ये मन बुद्धि अहंकार और भूमि जल अग्नि वायु आकाश, ये पांच, ये तीन और पांच मिलकर आठ हुए। इसको भगवान कह रहे हैं मैं भिन्ना प्रकृति, ये मेरी भिन्ना प्रकृति है। भिन्ना मतलब मुझसे भिन्न है, ये चिन्मयी प्रकृति नहीं है, जड़ प्रकृति है। तो चाहे जड़ प्रकृति हुआ चाहे चिन्मय प्रकृति, दोनों भगवान की ही शक्ति है, भगवान ही बने हुए हैं। भगवान शक्तिमान है और प्रकृति शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान में भेद भी है, अभेद भी है। इसीलिए जीव गोस्वामीपाद जी सिद्धांत स्थापित किए हैं, अचिंत भेदा भेदवाद। भेद है ईश्वर में और जीव में, जगत में और जीव में, जगत में और भगवान में, बहुत भेद है। पर अभेद भी है, सारे जीव भगवान के तटस्था शक्ति से बने हैं। तो भगवान में और जीव में किस बात का अभेद है कि वे क्वालिटी के दृष्टि से एक हैं। जैसे सूर्य मंडल और सूर्य के प्रकाश में भेद नहीं है, प्रकाश की दृष्टि से दोनों एक हैं। लेकिन एक अंतर है कि सूर्य मंडल प्रकाश पुंज है और एक प्रकाश बहुत कमजोर है, थोड़ा प्रकाश देता है। वो ऐसा नहीं कह सकता कि ये प्रकाश और सूर्य में भेद नहीं है। भेद है, क्योंकि सूर्य मंडल प्रकाश का आश्रय है, वहां से प्रकाश निकल रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि सूर्य की किरणों से सूर्य निकल रहा है। सूर्य के किरण में और सूर्य में भेद नहीं है, ठीक है वो क्वालिटी के दृष्टि से, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं क्वांटिटी के दृष्टि से बहुत अंतर है। एक में बहुत दाहकता है, प्रकाश है, एक में बहुत अल्प है, अणु है। इसी तरह भगवान में और जीव में भेद है। भगवान सभी जीवों के आश्रय हैं, स्वामी हैं, और जीव उनके नित्य दास हैं। ब्रह्मा जी से लेकर के कीट पर्यंत सभी भगवान के सेवक हैं और भगवान के आश्रय में रहते हैं। यह अंतर है। पर भगवान जब बोल रहे हैं चित्रकेतु महाराज से, तो यही कह रहे हैं कि अहम वही सर्वभूतानि, मैं ही सब भूत हूं, समस्त जीवों के रूप में मैं हूं, क्योंकि वे मेरी शक्ति से पैदा हुए हैं। और जीव जो भी खाता पीता है, शरीर है उसका, घर द्वार, सब कुछ मैं हूं। जीव मैं हूं और जीवों के लिए जो भोग्य पदार्थ हैं वो सब मैं हूं। इसीलिए सारे जगत में किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को कोई देखता है वैष्णव, तो सबको प्रणाम करता है। भगवान ने कहा है इस बात को, एकादश स्कंद भागवतम में कहा गया है, हम वायुमग्निम सरलम महिम च ज्योतिंश सत्वानि दिशो द्रुमादिम सरित समुद्राश्च हरे शरीरम जतकिंच भूतम प्रणमेद अनन्य। जो कुछ है इस संसार में, जो हम सुनते हैं, देखते हैं, वो सब कुछ भगवान का शरीर है। जतकिंच भूतम, जो कुछ भी है वो सब भगवान का शरीर है, ऐसा मान करके प्रणमेद अनन्य, अनन्य मन से प्रणाम करना चाहिए। वृक्षों को देखकर या चींटी को देखकर, कीले को देखकर, पक्षी को देखकर, पशु को देखकर, मनुष्य को देखकर, ये याद करना चाहिए कि ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ है, प्रणाम करना चाहिए। अनन्य, अनन्य किसको कहते हैं? रामचरितमानस में सुंदर कांड में इसका वर्णन है, सो अनन्य जाके असमति न टिकाई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं हनुमान जी से, हनुमान वह मेरा अनन्य सेवक है, सो अनन्य जाके असमति न टिकाई हनुमंत, जिसकी यह मति अचल अटल रहती है कि मैं सेवक हूं और सचराचर रूप स्वामी भगवान, और हमारे श्री भगवान चर अचर जड़ चेतन सभी पदार्थों के रूप में भगवान हैं। हमारे स्वामी सभी वस्तुओं के रूप में हैं सब जगह, और मैं सेवक हूं। अपने विषय में यही भावना होती है कि मैं सेवक हूं, मैं दास हूं। और श्री भगवान उस समय हनुमान जी को यह बात कह रहे हैं, जब हनुमान जी परीक्षा लेने गए थे, तो ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से श्री सुग्रीव जी ने भेजा हनुमान जी को जाकर देखिए कौन आ रहे हैं, धनुष बाण लिए हैं, कहीं हमको खोजते तो नहीं आ रहे हैं, हमको डर लगता है कि बाली ने भेजा है। तो हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में गए नीचे और भगवान राम और लक्ष्मण जी से मिले। तो वे पूछे कि आप दोनों कौन हैं, यहां जंगल में क्या कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि हम राजा दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या नरेश राजा दशरथ उनके पुत्र हैं, हम पिता की आज्ञा से वन में आए, लेकिन इस वन में दंडक वन में मेरी धर्म पत्नी को कोई चुरा ले गया है, उसी को हम खोज रहे हैं, इसीलिए वन में पहाड़ में कंदराओं में सब तरफ देख रहे हैं। तब हनुमान जी को बड़ी सांत्वना हुई। तब भगवान ने भी पूछ दिया, आपन चरित कहा हम गाय, विप्र कहूं निज कथा बुझाई, हम तो अपनी बात बता दी आपको, हे ब्राह्मण देवता आप अपने विषय में बताइए कि आप कौन हैं। इसी पर हनुमान जी रोने लगे, वे कहे कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं तो जीव हूं, लेकिन आप कैसे पूछ रहे हैं, मनुष्य की तरह आप अज्ञ की तरह पूछ रहे हैं, मैं आपका सेवक हूं। तो उसी समय श्री भगवान ने बताया है, हनुमान सुनो, मेरा अनन्य सेवक वो है जो सभी वस्तुओं में सभी प्राणियों में मुझको देखता है, चर अचर, चर चेतन को कहते हैं या चलने वाले, तो चेतन ही चल सकता है ना, जो चलता है जो नहीं चलता है, जड़ अस्थावर, चेतन मनुष्य आदि और स्थावर वृक्ष आदि सबको, चर अचर सभी वस्तुओं को सभी जीवों को मेरा रूप समझता है, मैं ही वास्तव में सब में हूं, मैं ही सबको जन्म दिया हूं, सबको बनाया हूं, वही अनन्य है जिस तरह सब जगह मुझको देखे, कहीं भी दृष्टि पड़े या सुने वहां ये भावना होनी चाहिए कि भगवान की सृष्टि है, भगवान इस रूप में है, भगवान पशु के रूप में है, पक्षी के रूप में है, मनुष्य के रूप में है, इसको भगवान राम अनन्य कह रहे हैं। सो अनन्य जाके असमति में तरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, चर और अचर के रूप में श्री भगवान हैं और मैं सेवक हूं। यही बात भगवान अनंत देव बोल रहे हैं, अहम वही सर्वभूतानि भूतात्मा भूत भावन, अहम वही मैं ही सब जीव हूं, सर्वभूतानि और भूतात्मा इसके साथ ही सबके शरीर में मैं चेतना के रूप में हूं, आत्मा हूं, भूत आत्मा भूत भावना सभी जीवों का कारण मैं हूं, सबको मैं उत्पन्न किया, सबको मैं जन्म दिया हूं और इसके साथ ही सबका प्रकाशक हूं। भगवान के में बातें बोल रहे हैं, जो अंगिरा जी ने ज्ञान दिया है और नारद जी ने उसी ज्ञान को और दृढ़ कर रहे हैं। बारंबार सुनने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है कि हम अपने गुरु से सुन लिए बस पूरा हो गया। बहुत बार एक ही तत्व को सुनने की जरूरत है। नारद जी ने ज्ञान दिया, अंग्रेज ने दिया, उसी ज्ञान को श्री भगवान दे रहे हैं चित्रकेतु महाराज। इसलिए कहते हैं जत नारदांगिरोभ्याम ते, जो ज्ञान आपको दिया नारद मुनि ने और अंगिराज ने, वही मेरे विषय में ज्ञान में अनुशासनम पा करके और मेरी विद्या सीख करके आप सिद्ध हो गए। तो सिद्ध हो जाने के बाद भी, संसिद्ध हो जाने के बाद भी भगवान ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। इस संसार में ज्ञान भूलता रहता है, विस्मृत हो जाता है, इसलिए बारंबार सुनने की जरूरत है। अभी दो महान पुरुषों से सुन करके आए हैं, भगवान का दर्शन किए चित्रकेतु, तो फिर भगवान ज्ञान दे रहे हैं। अहम वही सर्वभूतानि, मैं ही सब जीवों के रूप में हूं, क्योंकि सब जीव मेरी तटस्था शक्ति के कारण है। सब जीवों में जो चेतना के रूप में है वो मैं हूं, सभी जीवों के रूप में मैं हूं, मेरे कारण सबके जीवन में चेतना आती है, भूत भावना, और मैं ही पोषक हूं, पालने वाला हूं, कारण हूं। भावन का अर्थ है यहां कारण, सबको उत्पन्न करने वाला मैं हूं, भूत भावना। भगवान यहां तो कह रहे अहम वही सर्वभूतानि, मैं ही सब जीव हूं, सब वस्तुएं मैं ही हूं। इस ज्ञान को भगवान ने गीता में भी खूब अच्छा से प्रकट किया। कोई ये प्रश्न कर सकता है, सभी वस्तुओं के रूप में भगवान है, ये कैसे माने? तब तो कोई भी जीव भगवान है ना, कीट पतंग पशु पक्षी वृक्ष लता गुल्म, ये सभी भगवान है। तो श्री भगवान कहे मैं ही हूं, ते बहुत शंका होती है कैसे सभी वस्तुएं भगवान है, क्योंकि भगवान ने पैदा किया है, भगवान की शक्ति से सब बने। कोई जीव कोई भी पदार्थ बना नहीं सकता। इस संसार में पृथ्वी से अनेक वस्तुएं निकलती हैं, अन्न फल दूध आदि, स्टील पत्थर क्या क्या निकलता है, पर मनुष्य कोई भी बना नहीं सकता। एक भवन बनाना हो तो सीमेंट की कितनी जरूरत है, सीमेंट मनुष्य नहीं बना सकता है। वो तो भगवान के पत्थर को लेकर के पिसता है, और पिसता कैसे है, वो तो भगवान के द्वारा दिए गए लोहा से यंत्र से पिसता है। तो पत्थर भी भगवान दिए हैं, पिसने की बुद्धि और पिसने का यंत्र भी भगवान दिए। जब तैयार हो जाता है सीमेंट, तब तो व्यक्ति कहता है मैन्युफैक्चर्ड बाय मी, ये मेरे द्वारा बनाया गया। सभी वस्तुओं में यही ना लिखते हैं ये हमारे द्वारा बनाया गया। अरे मूर्ख कहीं के, तुम्हारा क्या है, क्या बना सकते हो? सारी दुनिया मिल करके एक मच्छर की टांग भी नहीं बना सकते। सारे वैज्ञानिक अपनी बुद्धि लगा दें, और एक मच्छर की टांग टूट गई है, उसको नहीं बना पाएंगे, ओरिजिनल नहीं बना पाएंगे। मैंने सुना है किसी किसी की आंख लोग बना देते हैं, तो भगवान के द्वारा बनाए हुए आंख को निकाल करके फिर फिट करते हैं, कुछ भी नहीं बना सकते। इतना भोजन करते हैं लोग, गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, तो एक भी गेहूं हम बना नहीं सकते। अपने आप भगवान की व्यवस्था से बनता है। हम तो केवल गेहूं के दाने को खेत में डाल देते हैं, पर कौन है जो उपजा रहा है? वो भगवान की ही शक्ति है, पृथ्वी में वो शक्ति है। एक टन गेहूं अगर बोया जाए तो हजारों टन होकर उत्पन्न होता है। तो गेहूं बन रहा है, चावल बन रहा है, चना बन रहा है, सब भगवान की शक्ति है, भगवान बनाते हैं। तो यह कहना बिल्कुल उचित है कि मैं ही सभी जीवों के रूप में हूं, मैं ही सब वस्तुओं के रूप में हूं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, डाउट नहीं है। इस संसार में दो प्रकार की वस्तुएं हैं। वस्तु जिसको कहा जाता है तो एक ही प्रकार की है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक फैक्ट और एक टेम्पररी। कुछ वस्तुएं हैं, वे हैं, अनुभव होती है। जैसे कोई व्यक्ति सपना देखता है, सपना में वो देख सकता है कि बाघ है, गाय है, घोड़ा है, मनुष्य है, पर वो सब कुछ कहाँ देखता है? अपने भीतर ही सब कुछ देखता है, अपने मन में देखता है। वो सब वस्तुएं हैं नहीं, उसे स्वप्न काल में केवल प्रकट है, दिखती है। सपना टूट जाने के बाद उसे गायब हो जाता है। तो जो गायब हो जाए, सदा न रहे, उसको अवस्तु कहते हैं, और जो रहे उसको फैक्ट वस्तु कहते हैं। तो जो भी संसार में वस्तु अवस्तु है, फैक्ट है या टेम्पररी है, सब कुछ भगवान है। भगवान ही सपना दिखाते हैं किसी को। जैसे कोई सपना देखने लगा कि मैं नदी पार कर रहा हूं, तो उसके मन में नदी की सृष्टि, जल की सृष्टि और स्वयं अपनी सृष्टि, ये सब कुछ भगवान है। ये टेम्पररी वस्तु है, लेकिन फिर भी भगवान है। भगवान की शक्ति से ही सपना होता है। यदेतद् विस्मृतम् पुंसो मद्भावम् भिन्नमात्मनः। जब इस ज्ञान को जीव भूल जाता है, क्या ज्ञान? मद्भावम्, मेरे विषय में भाव, कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो भूल जाता है। ये पुरुष का स्वभाव भूल जाता है। जब वह यह भूल जाता है कि मैं कृष्ण का अंश हूं, इस बात को भूल जाता है, अपने को स्वतंत्र मानने लगता है, ततः संसार ए तस्मिन, तब इसका संसार चालू होता है। संसार मतलब देहा देहो मृत्यु, एक देह के बाद दूसरा देह, एक मृत्यु के बाद फिर मृत्यु ये चालू होता है। तो हमारे जन्म मरण का कारण है भगवान से अपने को अलग सोचना। जीव जब ये भूल जाता है कि मैं भगवान का अंश हूं, भगवान हमारे स्वामी हैं, तब जीव को जन्म मरण में पड़ना पड़ता है। एक बहुत बड़े बंगाल के कवि कहते हैं कि कृष्ण बहिर्मुख हैया भोगवांछा करे निकटस्थ माया तारे झापटीय धरे। कृष्ण बहिर्मुख, जीव तो अनादि बहिर्मुख है, यह अनादि बहिर्मुखता के कारण भोग वांछा करता है, संसार को भोगना चाहता है, भोग की कामना करता है। उसी समय निकटस्थ माया, भगवान की बहिरंगा माया शक्ति तो निकट ही रहती है और झपट या धारे उसको पकड़ लेती है। अब कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके डुबाए, दंड जन राजा जन नदी ते चुबाए। माया उसको पकड़ लेती है, माया की शक्ति नहीं कि वो भगवान के धाम में जा सके। अनादि बहिर्मुख कहा गया है जीव, इसी भौतिक जगत में माया उसको पकड़ती है और मारती है। माया की पहुंच केवल भौतिक जगत में है, वैकुंठ में नहीं है, वो वहां कभी जा भी नहीं सकती, झांक भी नहीं सकती। यहां की मालकिन बनी है और उनकी मालकिन है जो कृष्ण के भक्त नहीं है, उनको मारती है, पीटती है, कभी स्वर्ग में उठाती है, कभी नरक में डुबाती है। ये बहुत से भक्तों के मन में ये दुर्ज्ञान बना हुआ है, ये बहुत मूर्खता है। ये लोग सोचते हैं कि हम भगवान के धाम में थे और वहां से हम गिरे हैं, जब माया वहां पहुंच ही नहीं सकती कैसे गिरेंगे, हम गए नहीं थे। यह सत्य है, हम अनादि बहिर्मुख हैं, इसी जगत में हैं और यह जगत माया का राज्य है, वो पकड़ती है, परंतु उन्हीं लोगों को पकड़ती है जो जीव भोगवांछा करते हैं, भगवान को भोग लगा करके नहीं खाते हैं, अपने को भोक्ता मान लेते हैं, मैं भोक्ता हूं, मैं स्वामी हूं। भगवान के स्वामित्व को ये स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे जीवों को माया खूब लताड़ती है और जो भी दुख देती है माया, इसका उद्देश्य है कि इस जीव को होश आ जाए, वो कृष्ण कॉन्शियस हो जाए, समझ ले कि कृष्ण हमारे प्रभु हैं, कृष्ण हमारे त्राता हैं, कृष्ण का मैं दास हूं। यह जब समझ आ जाएगी तो माया तुरंत छोड़ देगी। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तंतरंतते। जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण में हो जाता है तो माया उसे छोड़ देती है, अब नहीं मारती है। सबसे महत्वपूर्ण काम है भगवान की शरण में आना, अपनी पूर्ण बुद्धि से, विवेक शक्ति से भगवान की शरण में रहना चाहिए, तब हमें कोई भय नहीं रहेगा। पर एक बाधा है, यहां हम लोग भौतिक जगत में कोई न कोई कर्तव्य निश्चित कर लिए हैं। हम सोचते हैं ये कर्तव्य हमारा है, ये कर्तव्य हमारा है, हमें ये ड्यूटी करनी है, हमें ये ड्यूटी करनी है, सबसे बड़ी ड्यूटी है कृष्ण की शरण में आना। तो भगवान ने कहा है कि तुम सारे कर्तव्यों को छोड़ दो, सारे धर्म को छोड़ करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यहां सबसे बड़ा बंधन धर्म का बंधन है। हम मन में मान चुके हैं कि हमारा कर्तव्य है, हमारा सामाजिक कर्तव्य है, पारिवारिक कर्तव्य है, ये जरूरी है करना, पर सबसे जरूरी काम जो है हम भूल चुके हैं। सबसे जरूरी काम है भगवान का नाम जपना, और कोई काम हो या ना हो लेकिन जप होना ही चाहिए। इसी को भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज, सारे धर्मों को छोड़ो। जो भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं वे धर्म छोड़ने को क्यों कहेंगे? इसका अर्थ है कि हम बना लिए हैं कि हमारा ये धर्म है, हमारा ये धर्म है, हम गृहस्थ हैं, हमको ये सब काम करना है। कोई गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो या चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, सबका एक ही कर्तव्य है कृष्ण के शरण में होना, भगवान की भक्ति करना। इसलिए सब कर्तव्यों को छोड़ो। यदि ब्राह्मण हो, ब्राह्मणोचित कर्तव्य मान लिया हो उसको छोड़ो, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के धर्म को छोड़ो, शूद्र हो तो शूद्र के धर्म को छोड़ो। यही सारे धर्म का अर्थ है। हम लोग जहां भी हैं वहां धर्म गढ़ लिए हैं, एक परिवार में भी धर्म गढ़ लिए हैं। कोई बच्चा है, सोचता है उनको पढ़ाई करना हमारा धर्म है, और पढ़ लिया तो फिर सोचता है कुछ पैसा कमाना, परिवार पोषना हमारा धर्म है। धर्म सब रह जाएगा इसी तरह से। असली धर्म करने के लिए हम मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं, तो परम धर्म है श्री कृष्ण की शरण में होना। और हमसे जो भी गलती होगी, जो भी पाप होगा, वो सब भगवान क्षमा कर देंगे। अहम तम सर्व पापी भ्य मोक्षई स्वामी मास, तुम सब धर्म छोड़ो, मैं सब पाप से मुक्त कर दूं। भगवान के शरणागति में जो भी कर्तव्य अड़ंगा डाल रहा है वो कर्तव्य नहीं है, वो सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, वो काम कभी नहीं करना चाहिए। जिससे भगवान की भक्ति में बाधा पड़े तो काम नहीं करना चाहिए। गीता में भगवान का एक उद्गार है, कोई व्यक्ति सोच सकता है जो प्रभु धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं इन्हें धर्म छोड़ने के लिए क्यों कहते हैं? लेकिन ये मनुष्यों की गलती है, मान लिया ये हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है। बहुत मन में मान्यता होती है, हमारा कर्तव्य है बूढ़े माता पिता की सेवा करना, पत्नी का पालन करना, बच्चे का पालन करना, पढ़ाना लिखाना धर्म है। ये धर्म है, पर ये धर्म परम धर्म में बाधक नहीं होना चाहिए। हमारा जो परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, उसमें सहायक होना चाहिए। ठीक है, बच्चे की सेवा करें, कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चा परम धर्म में सहायक होना चाहिए। हमारे माता पिता परम धर्म में हमारी सहायता करें, भगवान की भक्ति में सहायता करें। यदि बाधक बनते हैं तब तो शत्रु हैं। सर्वदा ध्यान रहना चाहिए कि हमारा असली काम क्या है, असली कर्तव्य क्या है, असली धर्म क्या है। हमारा असली धर्म है इस भौतिक जगत से मुख मोड़ करके भगवान की शरण में होना। एक बार मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा। पत्र का विषय था कि मेरे परिवार के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं भगवान कृष्ण की भक्ति, मुझे क्या करना चाहिए, आप वैष्णव शिरोमणि हैं, कृपा करके बताइए मैं क्या करूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीधा पत्र का जवाब कर दिया किसी के द्वारा भेजा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिय ताहि कोटि बाई सम यद्यपि परम समय। जिसको राम सीता प्रिय नहीं है उसको करोड़ों बैरी के समान, शत्रु के समान समझ को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया, तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया। पिता को छोड़ क्या दिया, मरवा ही दिया। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण भाई, विभीषण जी रावण का त्याग कर दिया, भाई था बंधु भरत महतारी। विभीषण अपने बंधु को छोड़ दिए और भरत जी अपनी मां को छोड़ दिए, कैकेयी को छोड़ दिए, मां कभी जीवन में कहे नहीं। जिस कैकेयी ने राम को वन में भेज दिया उसको मां नहीं कहे भरत जी। एक बार की घटना है, माता कैकेयी चाहती थी कि भरत हमको मां कहे, तो भगवान ने कह दिया ये तो होगा नहीं, वो कहेगा नहीं। लेकिन भगवान ने एक वचन ले लिया भरत जी से कि हमको एक वचन दो कि मैं जो कहूंगा वो करोगे। तो भरत जी उस समय भी कहे, एक कैकेयी को मां कहने के अलावा और कुछ कहिए। भगवान चुप हो गए। बलि गुरु तज, बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग दिया, कम तो ब्रज बनी तन, और ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया। लेकिन भय बुद्ध मंगलकारी, लेकिन सभी आनंद में रहे, सुखी रहे, भगवान ने सबकी संभाल कर लिया। तो कहने के लिए यदि कोई भाई है, कोई पिता है, कोई माई है, तो बड़ा अच्छा संबंध है, मानना चाहिए। लेकिन राम के नाते से मानना चाहिए, राम का वह भक्त है इसलिए माँ है, या राम का भक्त इसलिए पिता है, भाई है, पति है, राम के नाते से मानना चाहिए। गोस्वामी जी अपना कहते हैं कि जितने भी सुहृद हैं, सेवा करने योग्य हैं, मानना चाहिए। लेकिन अंजन कहा आंख जेई फूटे बहुतक कहूं कहां, क्या हम उसको अंजन कहेंगे जिसको लगाते ही आंख फूट जाए, जो भी दिखाई दे रहा है बंद हो जाए आंख, आंख फूट जाए दिखाई ना दे, तो उसको अंजन नहीं कहेंगे। आपके भक्ति में यदि बाधक हैं, पति बाधक है, पति तो मर गए थे, बड़े भाई, पति के बड़े भाई बाधक थे, महाराणा, वही विष भिजवाए थे, सर्प भिजवाए थे, तो आप छोड़ दीजिए घर, पति ससुर सबको छोड़ करके साधुओं के समाज में आ जाइए। बहुत क्रांतिकारी शिक्षा दिया तुलसीदास जी ने। अगर भक्ति में बाधा हो रही है तो आप छोड़ दीजिए। तो मीरा जी त्याग करके घर और हाथ में तनपुरा लेकर के घूमने लगी सब जगह साधुओं के बीच में। अब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे में कोई, गिरधर गोपाल के प्रेम में घूमती रहती थी। जितने भी मित्र हैं, संबंधी हैं, सब भगवान के नाते से मानना चाहिए। अगर भक्ति में बाधक होने लगे तो कोशिश करनी चाहिए उनको समझाने की। यदि नहीं समझे, पूरा बाधक हो रहे हैं, तो छोड़ देना चाहिए। वो चाहे बेटा हो या चाहे बाप हो या भाई माई कोई हो, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा काम है भगवान की शरण में रहना। लब्धे हम मान सिम योनिम ज्ञान विज्ञान संभवान या आत्मानम यो न बुद्धे तो न क्वचित क्षेम मापन याद। लब्धवा इहा इस भारत भूमि में मनुष्य शरीर पा करके यदि कोई अपने को नहीं जान गया, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो फिर बहुत बहुत जन्म होगा, बहुत मृत्यु होगी, लेकिन कहीं भी क्षेम को, कल्याण को प्राप्त नहीं करेगा। बस और जोनियां हैं केवल भोग भोगने के लिए हैं। मनुष्य से वे बेटर भोग भोग सकते हैं। जैसे एक बार राधा रमण महाराज कथा कह रहे थे गुजरात में कि मनुष्य से ज्यादा सुखी पशु हैं, पक्षी हैं। आपने एक प्रकार के पक्षी को देखा होगा जो पेड़ के पत्ते में अपना झूलता हुआ भवन बना लेता है, भवन झूलता रहता है और उसमें उसके नीड में, उसके भवन में दरवाजा भी है, सब चीज है। हवा चलती है, हवा के झोंके से वो भवन हिलता है, लेकिन हिलते हुए भवन में बड़े सुख से पक्षी बैठा रहता है। तो इस तरह से हवाई महल कौन बनाएगा? यह तो पृथ्वी पर घर बनाते हैं, बहुत गर्मी होती है, कभी कभी कीचड़ होता है और गाड़ियों के आने जाने से बहुत जाम होता है, लेकिन पक्षी आराम से घर में रहता है। उस पक्षी को मैं कह रहा हूं जो घर बनाता है, और कहीं जाना है तो उड़ करके चला जाता है। कोई मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं है कि जाओ तेल भराओ, गैस स्टेशन पर प्रतीक्षा करो,
उड़ा चला गया।
भूख लगी, किसी वृक्ष पर बैठ करके उसका फल खा लिया, निश्चिंत जीवन है, बहुत सुखी है। तो भोग में हम पक्षी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। एक ही विशेषता है कि हम इस शरीर में भगवान का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसा ज्ञान किसी भी योनि में नहीं है। कोई भी पशु यह हरे कृष्ण कीर्तन नहीं कर सकता, कोई भी पक्षी कृष्ण नाम बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उनमें यह सुविधा नहीं है। केवल मनुष्य शरीर में ये विवेक बुद्धि भगवान ने दिया है, समझ सकता है। छोटा छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि भगवान कौन है, क्या है, और हमें भगवान के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन बहुत पुराने बैल को भी आप यदि शिक्षा दें कि तुम भगवान की भक्ति करो, कुछ समझेगा ही नहीं। या बहुत अनुभवी कुत्ते को सिखाइए कि तुम कृष्ण की भक्ति करो, जप करो, ये नहीं कर पाएगा। उन शरीरों में ये सुविधा नहीं है, ये केवल सुविधा है मनुष्य के शरीर में, और वो भी जो भारतवर्ष में जन्म लिए हैं उनको तो इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारत वर्ष में जिसका जन्म हुआ है उसको अपना जीवन सार्थक करना चाहिए, और अपना जीवन सार्थक करके फिर परोपकार करना चाहिए, प्रीचिंग करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि यदि इस शरीर में अपना कल्याण नहीं किया, अपने को नहीं जान पाया, तो अब कोटि कोटि वर्षों तक ये चांस नहीं आएगा। न क्वचित क्षेमम आपनेत, कहीं भी कल्याण प्राप्त नहीं करेगा। घोर अंधकार में पड़ करके केवल शरीर बदलता रहेगा, मरता रहेगा, जन्म लेता रहेगा व्यक्ति, लेकिन ये चांस केवल इस मनुष्य शरीर में है। वो अपने को मुक्त कर सकता है। सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया। इस संसार में स्त्री पुरुष मिल करके कर्म करते हैं, किस लिए? सुखाय, सुख के लिए, दुख मोक्षाय, और दुख से छूटने के लिए। दुख से छूटने के लिए कर्म कर रहे हैं और सुख पाने के लिए, पर निरंतर कर्म करने पर भी सुख मिल नहीं रहा है और दुख जा नहीं रहा है। इस विपर्यय को समझना चाहिए। एवं विपर्यम बुद्ध्वा नृणाम् विज्ञाभिमानिनः। मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता है, लेकिन काम कर रहा है मूर्खता का। विज्ञाभिमानिनः, अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानना, ये मनुष्य की कमजोरी है। बहुत बड़ा बुद्धिमान मान करके भी कर्म के पचड़ में पड़ा हुआ है। वो अपने को नहीं समझ पाता है। आत्मा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से अलग है। उसको तुरीय अवस्था कहते, चौथी अवस्था। इस संसार में हम लोगों को इसका अनुभव है, कभी कभी गाढ़ निद्रा में सोते हैं। गाढ़ निद्रा को सुप्ति कहते हैं और अर्ध निद्रा को सपना कहते हैं। सपना का अनुभव है, गाढ़ निद्रा का अनुभव है और जागृत जीवन का अनुभव है। कभी कभी हम लोग जगते हैं, कभी गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं और कभी स्वप्न देखने लगते हैं। ये तीन अवस्था प्रायः देखी जाती है, लेकिन अपने को समझना चाहिए कि मैं इन तीन अवस्थाओं से परे हूं। जागृत में हम ये कह सकते हैं कि अभी तो जगे हैं, हमारी अवस्था ठीक है, लेकिन ये जगना भी सोने के समान ही बेकार है। यदि हम भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं समझ रहे हैं, भगवान का ज्ञान नहीं है, तो ये जगना भी सोने के समान है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीव जाग गोरा चांद बर। गोरा चांद कह रहे हैं जीव जगो, किसको जगा रहे हैं? जो जगा हुआ है उसको कह रहे हैं, सोए हुए के नहीं। जीव जाग अरे जीव जागो जागो, ये किसको सुनाया जा रहा है? ये जागृत दशा में जो है उन्हीं को सुनाया जा रहा है, लेकिन भगवान कहते हैं कतर निद्रा जाओ माया पिशाची रे कोले, तुम माया पिशाची के कोले गोद में कब तक सोए रहोगे? जगो जगो। तो जगने का वास्तविक अर्थ है कि भगवान की याद करो, अपने परम प्रिय की याद करो। जो प्रभु हमारे जीवन के आधार हैं, सब कुछ दिए हैं, भूमि जल अग्नि सप्त दिए, ज्ञान भी देते हैं, चेतना के रूप में हृदय में ज्ञान देते हैं। यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है, कुछ सीखने लगा, तो इसलिए सीख रहा है कि भीतर भगवान सिखा रहे हैं। धीरे धीरे वो सीख जाता है भाषा आदि। तो भगवान सबसे बड़े उपकारी हैं। माता पिता तो जन्म दे देते हैं और कुछ पढ़ाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन पढ़ाई में असली सहायता कौन कर रहा है? जो भीतर है वो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञानम अपहनम, मेरे से स्मृति आ रही है, ज्ञान आ रहा है, विस्मृति आती है। भगवान ने सब दे रहे हैं। हम लोग रात को सोते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, तो भगवान ही भुलाते हैं, नींद दे करके भुला देते हैं। यदि न भूले तो मर जाएंगे चिंता से, टेंशन से। भूलना जरूरी है, जो भगवान निद्रा दे देते हैं, व्यक्ति भूल जाता है कुछ घंटों के लिए, संसार की चिंता को भूल जाता है। कई बार लोग पूछते हैं नींद अच्छी आ रही है ना, प्रायः रोगियों से पूछते हैं, हमसे भी कई बार पूछा गया, नींद आती है, भूख लगती है? मैं कहता हूं हां, भगवान की कृपा से नींद आती है, भूख लगती है, लेकिन ये पूछा जाता है। ये असली नींद देने वाले श्री भगवान हैं और भोजन देने वाले तो हैं ही। तो बच्चों की पढ़ाई की मैं बात कर रहा था, उनमें थोड़ा ज्ञान जो आ रहा है वो भगवान ही देते हैं। माता पिता तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक साल में बहुत ज्यादा पढ़ ले, लेकिन उतना ही पढ़ पाया जितना परमात्मा को मंजूर है, जो हृदय में बैठ करके स्मृति दे रहे हैं उनके हाथ में है। कोई भी कार्य सफल होगा नहीं होगा सब भगवान के हाथ में है। इसलिए श्री भगवान यहां कह रहे हैं सर्वात्मना सब प्रकार से जीव का स्वार्थ यही है। जब परात्मिक दर्शनम सब जगह सब समय एक परात्मा को श्री भगवान को देखना यही सबसे बड़ा स्वार्थ है। अपना अर्थ है अपना प्रयोजन यही है कि सब समय सब जगह हम भगवान को देखें। याद रखें अपने संबंध को। इतना कह करके श्री भगवान वही चित्रकेतु के देखते देखते अंतर्हित हो गए। कहीं से आए नहीं थे वहीं प्रकट हुए थे और चित्रकेतु महाराज के देखते देखते स्तुति करते करते हुए गायब अंतर्हित हो गए। फिर चित्रकेतु महाराज उनको प्रणाम किए। जिस दिशा में भगवान अंतर्हित हुए थे उस दिशा को प्रणाम कर रहे थे। देखे नहीं कि भगवान कहां जा रहे हैं। जैसे जहां पर वे अलक्षित हुए थे वहीं बार बार प्रणाम कर रहे। उसके बाद 17वां अध्याय चालू होगा। इसको कल कहा जाएगा। जय श्री प्रभुपाद।